त्रिशान मामले की गंभीरता को अच्छे से समझता था, जबकि आकांक्षा इन सबसे अनजान थी। इस वजह से वो ध्यान केंद्रित करने और शक्तियां जागृत करने को इतना सीरियसली नहीं ले पा रही थी। त्रिशान ने जब उसे इस बात को हल्के में लेते देखा तो उसका गुस्सा आपे से बाहर हो गया। तुम इतनी सीरियस चीज को मजाक में कैसे उड़ा सकती हो? अगर ऐसा करोगी तो इस जिंदगी में कभी भी अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर पाओगी। क्या रिवांश तुम्हारे लिए इस दुनिया से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तुम्हें तो पता भी नहीं कि इस दुनिया बोलते हुए त्रिशान रुक गया, जब उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोलने जा रहा था। तुम इस तरह आकांक्षा पर क्यों चिल्ला रहे हो? एंड तुम्हें कितनी बार कहा है कि दूसरों की बातें छुपकर मत सुना करो? तुम तो राजपुरोहित जी को जानते तक नहीं। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। जाह्नवी पीछे से आकर चिल्लाई, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? और त्रिशान, मैं करने की कोशिश तो कर रही हूं ना। राजपुरोहित जी ने हमें कहा था कि एक दिन में पॉसिबल। तुम्हारे पास पहले से कुदरत की शक्तियां हैं, सामान्य इंसान को इसे करने में टाइम लगता है, लेकिन तुम्हें खुद को पहचानना होगा। अगर ऐसे ही टाइम पास करती रही तो कभी नहीं होने वाला। फिर यहाँ एक दिन क्या एक साल तक बैठी रहोगी ना, तो भी अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर पाओगी। गुस्से में त्रिशान आकांक्षा पर बिफर पड़ा। उसकी बात सुनकर आकांक्षा की आंखें नम हो गई। त्रिशान ने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें डीमोटिवेट करने की? इससे इसे क्या मतलब था कि तुमसे होने वाला है या नहीं होने वाला? जब देखो दूसरों के काम में टांग अड़ाता रहता है। जाह्नवी आकांक्षा के पास आकर बोली, ठीक है तो कह रहा था वो, मैंने ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। जाह्नवी, ठीक है ना, नहीं हो पा रहा तो जाकर राजपुरोहित जी से बोल देते हैं कि तुम्हारे पास कोई शक्तियां नहीं है। मैं दादू को बोलती हूँ कि हम आज शाम ही वापस यहाँ से निकलते हैं। लो, कहकर जाह्नवी वहां से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद आकांक्षा फिर से आंखें बंद कर बैठ गई और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने लगी। उसके कानों में त्रिशान की कही बातें गूंज रही थीं। अब तो मुझे कैसे भी करके करना ही होगा, मैं हार नहीं मान सकती। त्रिशान ने कहा कि मेरे लिए ये दुनिया ज्यादा इम्पोर्टेंट है या रिवांश? अगर मेरी शक्तियां जागृत ना होने की वजह से दुनिया में कुछ बुरा हो सकता है तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। मुझे खुद को प्रूफ करना ही होगा। आकांक्षा ने फिर से आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने लगी। इस बार उसके मन ने रिवांश और त्रिशान के ख्यालों से काबू पा लिया था। थोड़ी सी देर में वो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। चार चार चार। त्रिशान गुस्से में आकांक्षा के कक्ष से बाहर आ गया था। बाहर आकर वो मंदिर से कुछ दूर बने बगीचे में बेंच पर बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। पता नहीं कि ये लड़कियां समझती क्यों नहीं है, दादू भी ने सीधे सीधे सच बता क्यों नहीं देते कि उन्होंने अपनी शक्तियों के जरिए कौन से भविष्यवाणी को महसूस किया था। कुदरत भी एक ऐसे इंसान को इतनी शक्तियां और उसके कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे सकती है जिसे इस बात का एहसास तक नहीं कि वो क्या है? क्यों आकांक्षा ही इस दुनिया को बचा सकती है? अगर वो इतनी ही शक्तिशाली है तो उसे अपनी शक्तियों का एहसास तक क्यों नहीं है? त्रिशान गुस्से में बड़बड़ा रहा था, क्योंकि उसके मन की मासूमियत ही उसकी असली शक्तियां हैं। अगर वो इन सब बातों को समझ पाती हो तो अपनी शक्तियों का नाजायज फायदा उठाने की समझ भी उसमें होती। राजपुरोहित जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दादू आप उसे सच क्यों नहीं बता देते हैं? त्रिशान ने कहा, मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने उसे सच बताया तो वो घबरा जाएगी। साथ ही अगर उसे ये पता चल गया कि मैं उसका ये सच भी जानता हूँ कि उसने रिवांश को नहीं मारा, तो शायद उसे खुद पर शर्मिंदगी भी महसूस हो कि उसने मेरे सामने झूठ बोला, राजपुरोहित जी ने स्पष्ट किया। लेकिन गलती तो सारी उसी की है ना, अगर वो उस दिन रिवांश को मार देती तो ये मुसीबत आती ही नहीं। त्रिशान ने गुस्से में जवाब दिया, ऐसा नहीं है त्रिशान, कहते हैं होनी को कोई नहीं टाल सकता। अगर आकांक्षा का जन्म कुछ खास शक्तियों के साथ हुआ है, इसका मतलब ये भी पहले ही तय हो गया था। रिवांश का दिल सच्चा है, इसलिए आकांक्षा उसके प्रेम के मोह बंधन में बंध गई। अगर उसे पहले ही पता होता कि उसका ये प्रेम दुनिया के लिए मुसीबत साबित हो सकता है तो अच्छा होता ना। त्रिशान ने राजपुरोहित जी की बात काट कर कहा, राजपुरोहित जी हताश मत हो, हताशा ही हमारी हार का सबसे पहला कारण होती है। जब आकांक्षा उस कक्ष में बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश कर सकती है, फिर तुम तो पहले से खुद की शक्तियों को जागृत कर चुके हो। तुम्हें आकांक्षा के रिवांश से प्रेम करने से इतनी समस्या हो रही है, तुम भी तो एक इंसान से ही प्यार करते हो। लेकिन मेरा प्यार किसी के लिए मुसीबत खड़ा नहीं करेगा दादू। अगर मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं उसके लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। त्रिशान लगातार राजपुरोहित जी से बहस करे जा रहा था। जब से उसे राजपुरोहित जी से पता चला था कि शीघ्र ही इस दुनिया में बुराई का राज होने वाला था, उस दिन से उसने अपनी जी जान लगाकर बुराई को रोकने की कोशिश शुरू कर दी थी। मैं जानता हूं कि तुम नहीं चाहते कि इस दुनिया में बुराई का परचम फैले, तुम हिम्मत मत हारो, हम कर लेंगे। राजपुरोहित जी ने प्यार से त्रिशान के बालों में हाथ फिराया। ऐसा करते ही मानो उसके अंदर किसी ने ऊर्जा का संचरण हो गया हो, उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया और मन शांत हो गया हो। मुझे उन दोनों पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, मैं उनसे बात करके आता हूँ दादू, ऐसा कहकर त्रिशान आकांक्षा और जाह्नवी से माफी मांगने के लिए वहां से चला गया। हे माका रानी, आपने इस दुनिया में बहुत प्रकार के जीवों को बनाया है, लेकिन सबकी प्रवृत्ति अलग होने के बावजूद उनमें अच्छाई का एक अंश देकर आपने सबको एक उम्मीद से बांध दिया। जहां रिवांश पिशाच होकर भी बुराई से अछूता रहा, तो वहीं त्रिशान के अंदर भी सारी बुरी ताकतें होने के बावजूद उसने उस पर विजय हासिल की और आज इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है। आकांक्षा को तो आभास तक नहीं कि उसकी शक्तियां कितने नायाब हैं और उसे किस लिए दी गई हैं। इन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ। राजपुरोहित जी ने सोचते हुए माता रानी के मंदिर के सामने हाथ जोड़े और अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। चार चार चार। नरक के सिंहासन पर बैठे बुराई के देव के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। उसके चेहरे पर एक सुकून का भाव था, मानो शीघ्र ही वो अपने मकसद में कामयाब होने वाला था। वो पांचों मूर्तियां धरती पर पहुंच चुकी होंगी, अब तो उन्हें बस अपनी बुराई को इधर उधर फैलाना है। देखने में भले ही वो आम मूर्तियां हों, लेकिन उन पांच मूर्तियां पांच तरह के अवगुण से बनी हैं। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अहंकार। इन पांचों मूर्तियों को बस रिवांश के पास पहुंचने भर की देर है, फिर तो उसके छूने मात्र से उसमें उन मूर्तियों के अवगुण उसमें आ जाएंगे। एक बार उसके अंदर की बुराई का अंश जागृत हो गया, उसके बाद उसे इंसानों को अपने काबू में लेते देर नहीं लगेगी। आने वाले चंद्रग्रहण में अब ज्यादा समय नहीं रहा। उस दिन रिवांश नरक का राजा बनेगा। पूरी धरती और पाताल पर उसका आधिपत्य होगा। इस बार हम किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें खुद जाकर उन मूर्तियों को राजकुमार रिवांश तक पहुंचाना होगा। बुराई के देव ने अपने हाथ में लिए डंडे को पकड़ा और खड़ा हो गया। अगले ही पल वो वहां से अदृश्य हो गया और गुफा के उस द्वार से बाहर निकला जो कि धरती पर पाताल का रास्ता था।